निकाल करके विचार कर रहे हैं, हमारा जो शेष जीवन रहा उसे हम कैसे बेहतर बनाएं, कैसे अच्छे ढंग से जिए। अगर हमारे पास सच्चाई का ज्ञान है, दृष्टि की निर्मलता है, तो हम अपने जीवन को एक सही दिशा दे पाएंगे और अपनी दशा बदल पाएंगे। जब तक ठीक दिशा में व्यक्ति नहीं चलता, अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचता, कितनी भी वो दशा अपनी बदल ले, कितने भी रूप धारण कर ले, कितने भी वेश वो धारण करे, लेकिन यदि ठीक दिशा में नहीं जाता तो वो अपनी मंजिल को नहीं पा सकता। दृष्टि की निर्मलता हमें सच्चाई का ज्ञान कराती है, हमें दिशा बोध देती है, हमारा मार्गदर्शन करती है। वो दृष्टि की निर्मलता पिछले कई दिनों से अपन लगातार समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी इन दो आंखों से तो हम सिर्फ संसार देख पाते हैं, लेकिन संसार में भी हम अपने जीवन को परम पद में स्थित कर सकते हैं, ऐसी दृष्टि अपने को प्राप्त हो जाए, तभी दृष्टि की निर्मलता कहलाएगी। जीवन को अच्छा बनाने का मतलब अपन सिर्फ यही समझते हैं कि अच्छी दुकान हो, अच्छा मकान हो, अच्छा कपड़ा लत्ता पहनने को हो, खाने पीने को हो, ये सिर्फ अच्छे होने का लक्षण नहीं है। अपने जीवन में वास्तव में हमारा जीवन वीतरागता से संपन्न हो तो ही जीवन अच्छा है। जितना हमारे परिणामों में निर्मलता है, जितना हमारी वाणी में और कर्मों में सादगी और सरलता है, उतना हमारा जीवन अच्छा कहलाए। ऐसा बनने के लिए अपने पास में दृष्टि हो, विचार हो कि हाँ सचमुच हम ऐसा बनना चाहते हैं। जरूरी है कि जो इस रास्ते पर चल करके वैसे बन गए हैं उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करें, जो इस रास्ते पर चल करके अपने जीवन को अच्छा बनाने में, वीतरागी बनाने में लगे हैं उनके प्रति अपन अपनी श्रद्धा भक्ति व्यक्त करें। तो वीतरागी भगवान निर्ग्रंथ गुरु और दया धर्म के प्रति अपने मन में श्रद्धा और भक्ति जागृत होनी चाहिए, जिनसे कि हम हमारे आत्मा का स्वरूप वीतरागी है ये शिक्षा ले सकें। बहुत लोग शिक्षा देते हैं, अपन जिन गुरुजी से अनार का सीखे हैं उन्होंने भी आत्मा को शिक्षा दी है, वो भी हमारे शिक्षक हैं, लेकिन हमें आध्यात्मिक रूप से हमारी चेतना को विकसित करके वीतरागता की तरफ ले जाने वाले ऐसे गुरुओं के प्रति भी हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, दया धर्म के प्रति भी हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। और जिन्होंने अपने उस वीतराग स्वरूप को प्राप्त कर लिया ऐसे भगवान के प्रति भी अपने मन में श्रद्धा होनी चाहिए, तब जाकर के अपनी दृष्टि निर्मल होती है। ये तो सिर्फ बाह्य निमित्त है जिनके द्वारा होती है, जरूरी नहीं है कि इन सब के प्राप्त होने के बाद भी दृष्टि निर्मल हो जाए। अपन इनसे भी अपना स्वार्थ साधने लगे अगर तो कहां से दृष्टि निर्मल होगी। अपन ये सिर्फ निमित्त है, इनके माध्यम से अपना परमार्थ संभालने की कोशिश करेंगे तो ही अपना जीवन अच्छा बने। क्या हुआ, एक बार एक व्यक्ति यात्रा कर रहा था तो उसका एक्सीडेंट हो गया कार से, तो सब कुछ डैमेज हो गया, उसका सारा शरीर टूट फूट बहुत हो गई, सब में पट्टियां वट्टियां बंध गई, हॉस्पिटलाइज करना पड़ा उसको, और वो पड़ा हुआ बेड पर। अब लोगों का तांता लगा हुआ है, देखने आने वालों का बहुत लोग आ रहे हैं, सब उसकी राजी खुशी पूछ रहे हैं, वो मुस्कुरा देता है बस। उसका एक बहुत प्रिय मित्र आता है, वो राजी खुशी नहीं पूछता, वो तो सिरहाने बैठ करके क्या कहता है कि बहुत तकलीफ होती होगी, बहुत चोट लग गई ना, तो उसको देख करके भी वो हंस दिया। तो उसने कहा, अरे इतनी तकलीफ है, इतनी ज्यादा चोट लग गई, ऐसे में भी तुम मुस्कुरा रहे हो, हंस रहे हो, तुम्हें दर्द नहीं होता? When I laugh, I feel some pain. जब मैं थोड़ा सा हंसता या मुस्कुराता हूं तब थोड़ी तकलीफ होती, वैसे कोई तकलीफ नहीं। अब बताओ, ये तो और गड़बड़ बात हो गई, कुछ समझ में नहीं आया उस मित्र को। उसने कहा कि एक चीज तो ये कि इतनी तकलीफ में तुम हंस रहे हो, मुस्कुरा ले रहे हो, और दूसरा ये कि ये कह रहे हो कि मुझे कोई तकलीफ नहीं है, थोड़ी सी जब मुस्कुराता हूं हंसता हूं तब थोड़ी सी तकलीफ महसूस करता हूं, कुछ समझ में नहीं आया, मुझे बताओ। तो उसने इतना ही कहा कि मैं अभी तक सोचता था कि इसके टूट जाने से मैं ही टूट जाऊंगा, लेकिन ये तो पूरा टूट गया, मैं अभी भी साबुत हूं, मैं ठीक हूं। जब जब मैं ये बात स्मरण करता हूं मुझे अपनी अज्ञानता पर हंसी आ जाती है और साथ में दुख भी होता है, तब थोड़ा सा मुझे दर्द महसूस होता है, वरना तो अब मुझे वास्तव में ज्ञान हुआ कि मैं देह को ही आत्मा मान करके जीता था, इसके टूट फूट जाने से अपने टूटने फूटने को लेखता था, लेकिन अब इतना सब कुछ हो जाने के बाद समझ में आया है कि इसके टूट जाने से मेरी आत्मा नहीं टूटती, मैं अपने परिणाम खराब करूं तो ही मेरा पतन होगा, अकेले शरीर के पतन से मेरी आत्मा का पतन नहीं होता। ये चीज मुझे एक्सीडेंट के बाद समझ में आई। बताइए, ऐसा भेद विज्ञान, ऐसा दृष्टि की निर्मलता किसको किस निमित्त से प्राप्त हो जाएगी कहा नहीं जा सकता। उसके जीवन में इतनी तकलीफ और पीड़ा का अवसर आया, लेकिन उसने उस अवसर पर ज्ञान प्राप्त करके, दिशा प्राप्त करके, सब कुछ है उसको, तकलीफ है, टूट फूट गया है शरीर, लेकिन इसके बाद भी प्रसन्न है। किस बात से प्रसन्न है? मुझे वास्तव में ज्ञान हो गया। अपन भी घर गृहस्थी में जीते हैं लेकिन अपनी दृष्टि निर्मल हो जाए तो जीने का स्टाइल बदल जाएगा। वैसा ही खाना खाएंगे, कुछ ऐसा नहीं समझना कि स्टाइल बदल जाएगा मतलब कि अभी सीधा सीधा खाते थे फिर ऐसे घुमा के खाने लगेंगे, ऐसा नहीं। दृष्टि निर्मल हो जाने पर अभी तो हम सिर्फ भूख मिटाने के लिए, आयु के लिए, बल के लिए भोजन करते थे, अब एटीट्यूड चेंज हो गया, मैं तो इस शरीर को भोजन करा रहा हूं ताकि इस शरीर से तपस्या कर सकूं, ताकि मैं इससे और लोगों की सेवा कर सकूं, भैया वृत्ति कर सकूं, मैं इससे पांच इंद्रियों और मन के भोगों को भोग सकूं, एक सोच ये है। और दृष्टि निर्मल होने पर सोच बदल गया, नहीं इस देह का मैं सदुपयोग करूंगा, दुरुपयोग नहीं करूंगा, इस वाणी से मैं किसी को अपशब्द नहीं कहूंगा क्योंकि इसी वाणी से मैंने भगवान की पूजा करी है, ये एटीट्यूड चेंज हो गया। जिस वाणी से मैंने भगवान की पूजा करी उसी से अपशब्द कहूं, अपने आप मन में ध्यान आएगा कि नहीं नहीं, जिस वाणी से मैंने भगवान की प्रशंसा करी उसी से और लोगों की निंदा करूं, ये तो मेरी वाणी को ठीक नहीं जचता, तो मेरी वाणी समझ जाएगी। जिस मन में मैं भगवान के गुणों की वीतरागता की प्रशंसा करता हूं उसी मन में दूसरे के लिए बुरा विचार करो, मैं तो श्रेष्ठ ही विचार करूंगा, ऐसा भाव अपने आप मन में आने लगेगा। सब कुछ वैसा ही चल रहा है लेकिन दृष्टि बदल जाने से मानो पूरा जीवन बदल गया। अपन कहते भी हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसके मन में जैसी भावना होगी वैसा उसे दिखाई पड़ेगा इस संसार में, जैसा संसार है वैसा नहीं देखते अपन, अपने राग द्वेष से प्रेरित होकर के देखते हैं, कोई चीज अच्छी लगती है कोई चीज बुरी लगती है, इस टनिष्ट की कल्पना करके हर्ष विषाद कर लेते हैं। लेकिन जिसकी दृष्टि निर्मल है वो इन सारी स्थितियों में विषमताओं के बीच भी समता का पान करता है और अपने जीवन के लिए ऊंचा उठाने की हमेशा चिंता करता है। ये दृष्टि अपन को प्राप्त हो जाए। संत रंगनाथ या रंगदास कोई एक हुए हैं, वो उनके बचपन में उनके पिताजी ने उनको फल फूल खरीदने के लिए पैसे दिए और भेजा बाजार, तो वो फल तो लाए नहीं, रस्ते में उनको दीनहीन गरीब लोग मिल गए तो उनने पैसे मांगे कि हमें तो खाने के लिए नहीं है, तो सबको वो पैसे जिनसे फल खरीदना थे वो सब बांट दिए, खाली हाथ घर लौट के आए, 10-12 साल के थे। पिताजी पहले तो इस मुश्किल में पड़े कि शायद किसी ने तमाचा माचा मार के पैसे ना छीन लिए हो, फिर जब पूछा कि क्यों फल लेकर नहीं आए तो उन्होंने कहा कि अभी तो लेकर नहीं आया लेकिन मैं तो आगामी जीवन के लिए अच्छे फल लेकर आया हूं। अब बड़े चकित हो गए कि इतना ज्ञानवान इसको छीन कैसे सकता है, छीने ही नहीं है, इसने कुछ और किया है। पिताजी को पहली समझ में नहीं आई कि अभी तुम फल नहीं लाए हो बाद में फल मिलेंगे ऐसा कह रहे हो, क्या हुआ ये तो बताओ। तो उसने सारी घटना सुनाई। उस बालक ने अपने पिता को कहा कि मैं तो भोजन करके और फल की आकांक्षा कर रहा हूं कि फल फूल खाऊंगा पेट भरने के लिए, कई लोग तो रस्ते में ऐसे थे जिनको कि एक जून का भोजन भी नहीं मिला, मैंने उनको वो राशि दे दी जिससे कि वो अपना पेट भर सके। दृष्टि देखिएगा, और उपकार करके पिता को कह दिया कि फल अभी नहीं मिलेगा बाद को मिलेगा। पिताजी बहुत खुश हुए, उन्होंने कहा बेटे तुम भले ही फल नहीं लाए, कौन कहता है कि तुम फल नहीं लाए, तुम तो अमर फल लेकर के आए, ऐसा फल लेकर के आए जो कि खा पी करके बराबर नहीं किया जा सकता, खत्म नहीं किया जाता, पंचेंद्रिय और मन के विषयों को त्याग करके जो फल अपन पाते हैं, जो वीतरागता और जो आत्म स्वरूप अपन पाते हैं, सब कुछ छोड़ देने के बाद दूसरे के उपकार के लिए भी छोड़ते हैं अगर, तब भी अपना ही उपकार होता है, ये ध्यान रखें अपन। ऐसी दृष्टि अपन को प्राप्त हो जाए, इसके लिए अपन निरंतर रोज बैठ करके विचार कर रहे हैं। पता नहीं किसको किस निमित्त से हो जाए, आचार्य भगवंतों ने बहुत सारे दृष्टि की निर्मलता के लिए निमित्तों की चर्चा करी है। आज्ञा सम्यक, तो कोई ज्ञानवान नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, उसको सच्चे धर्म का काठा रागी नहीं आता, उसने सात तत्व नहीं पढ़े, न वो पढ़ पाता है, निरक्षर है, लेकिन उसे ये श्रद्धान है कि जैसा तत्व का स्वरूप दीपराज भगवान ने कहा है सो ही सच्चा है। बस इतने मात्र से भगवान की आज्ञा, वीतराग भगवान की आज्ञा ही उसके लिए श्रद्धान में निमित्त बन गई। ऐसे आज्ञा सम्यक दर्शन भी आज के समय में हो सकता है बिना पढ़ी लिखी व्यक्ति को भी। अपन भी ज्यादा ज्ञानवान नहीं है ऐसा सोच करके सिर्फ मैं तो अज्ञानी हूं, मुझे तत्व का स्वरूप वास्तविक क्या है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन जैसा स्वरूप वीतरागी भगवान ने कहा है सोई सच्चा है। क्या है पूछो के का कही उनने, ये नहीं मालूम, मगर जो उनने कहा है बस वही सच्चा है, ऐसा श्रद्धान है। ऐसे श्रद्धान अकेले मात्र से भी आज्ञा सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता, दृष्टि की निर्मलता व्यक्ति को प्राप्त हो सकती। फिर मार्ग सम्यक दर्शन, वीतराग मार्ग है जिसकी चर्या देख करके, वीतराग मुनि महाराज को देख करके पशु को भी दृष्टि की निर्मलता प्राप्त हो सकती कि बाहर खड़ा हुआ है और वहां से वीतराग मुद्रा उसके देखने में आ गई, फौरन उसके भी मन है, वो भी विचारवान है, वो विचार कर सकता कि वास्तव में यही निष्परिग्रह दशा ही श्रेष्ठ है, ये आशक्ति तो संसार बढ़ाने वाली है। इतने मात्र ज्ञान से कछु पढ़े लिखे नहीं है, कौन स्कूल में नहीं पढ़े गए पशु वगैरह, गाय कौन स्कूल पढ़ी, आनार को सीखो उन्हें लिख तो लो, मन बनत नहीं है, ने स्लेट पट्टी वो के पास आए, लेकिन फिर भी उसने वीतराग मुद्रा देख करके क्या निर्णय ले लिया कि संसार में तो परिग्रह दुखदाई है, ये मुद्रा ठीक है, निष्परिग्रह की प्रेरणा देती है और आशक्ति तो संसार को बढ़ाने वाली है। इतने मात्र निर्णय करने से उसको दृष्टि की निर्मलता प्राप्त होगी। और अपन तो 24 घंटे भी देखते हैं लेकिन काहे के लिए, हमारी दुकान अच्छी चलत रहे, हमारा मकान अच्छो बन जावे, इस आशक्ति से प्रेरित होकर के देखते हैं। आशक्ति से प्रेरित होकर के जो व्यक्ति सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति भी श्रद्धा रखता है उसे दृष्टि की निर्मलता प्राप्त नहीं हो सकती। अनाशक्ति अपने भीतर लाने के लिए प्रयत्नशील है, वो अगर श्रद्धान करता है तो उसे दृष्टि की निर्मलता प्राप्त आज भी हो सकती। उपदेश सुनने मात्र से वीतराग भगवान के जीवन चरित्र को, महापुरुषों के जीवन चरित्र को, उनकी जीवनचर्या को, उनके संस्मरण को सुन करके, अरे वाह इस तरह से उन्होंने अपना जीवन जिया, बहुत अच्छा है, वास्तव में तो ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा निर्णय अपने मन में आ गया, हो गई दृष्टि निर्मल। महापुरुषों के जीवन चरित्र को सुनकर के अकेले, ज्यादा कुछ भी नहीं किया, न किताब पढ़ी न कुछ, दूसरे के द्वारा महापुरुषों का जीवन चरित्र सुन लिया और उसे ही सही मान करके, अनाशक्त होकर के अपना जीवन जीने का संकल्प ले लिया, उपदेश के द्वारा भी दृष्टि निर्मल हो सकती है। सूत्र सम्यक दर्शन भी है, द्वादशांग जो कि आज अवेलेबल नहीं है, लेकिन उस द्वादशांग का अध्ययन करके भी सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, जीवों को द्वादशांग भी निमित्त बन जाता है, द्रव्य शुद्ध भी सम्यक दर्शन में निमित्त बन जाता है। आज वर्तमान में जितना भी है उपदेश प्राप्त है अपन को वीतराग भगवान का, सर्वज्ञ भगवान का, बताइएगा उस उपदेश से भी अपन चाहते तो दृष्टि निर्मल कर सकते थे, लेकिन उस शास्त्र का भी उपयोग कहे के लिए किया अपन ने, उस ज्ञान का भी उपयोग दो पैसा कमावे के लाने, आजीविका के लिए, अपने दृष्टि की निर्मलता प्राप्त करने के लिए किया क्या? आज कितना ज्ञान है लोगों के पास, लेकिन काय के लिए? अर्थ करी विद्या है, दो पैसा कमावे के लाने ज्ञान प्राप्त है, और ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जिससे कि आत्म कल्याण की ललक पैदा हो जाए, तो दृष्टि की निर्मलता से संपन्न हो सकता व्यक्ति जीवादि तत्व जो कि जिनका की अर्थ बहुत दूर है, बहुत कठिनाई से समझ में आता है। कल अपन ने चर्चा करी थी शिवभूति नाम के मुनि महाराज जो कि तुस्मास घोषंतो ऐसा कहते थे, जिनको नमोकार मंत्र भी याद नहीं रहता था, इतनी अज्ञानता थी, कुछ भी ज्ञान नहीं था अक्षर का, लेकिन भेद विज्ञान होने पर, बीज बुद्धि विद्धि होने पर, सारे द्वादशांग को जैसे कि एक बीज में पूरा वृक्ष होता है, आप कल्पना कर सकते हैं कि इतना सा बीज खसखस के बराबर बट वृक्ष उसके भीतर ही है, उसको जरा सी जमीन मिली कि फैलेगा वो। ठीक ऐसा ही बीज बुद्धि विद्धि प्राप्त करके भी और तत्व का ज्ञान प्राप्त करके उस पर श्रद्धान करके अपनी दृष्टि को निर्मल बनाया जा सकता है, वो भी निमित्त है। इतना ही नहीं, संक्षेप में कुछ लोगों को तो विस्तार में तत्व का स्वरूप सुनने पर दृष्टि निर्मल हो जाती है, कुछ लोग थोड़े से संक्षेप में सुन करके ही दृष्टि को निर्मल कर सकते हैं, वह भी निमित्त है। डिटेल में किसी चीज को बताने पर समझ में आता है, किसी को थोड़े में ही बताने पर मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ हो सकता है, वो भी निमित्त बन सकता है। बिना पढ़े बिना समझे भी जिसको अपनी विशुद्धि के द्वारा अर्थ समझ में आ जाए, हमने जैसे ही कहा किसी व्यक्ति को कि जाओ घड़ा ले आओ, घड़ा कैसा होता है, कहां रखा होगा, घड़े का अर्थ क्या होता है, सब कुछ समझ में आ गया। घड़ा क्या काम में आता है, पानी भरा हुआ उस कोने में रखा हुआ है घड़ा, ऐसा होता है, और उठा करके ले आया। घड़ा शब्द सुनने मात्र से उसको जैसे कि अर्थ का बोध हो गया, ऐसे ही जीव सुन करके जीव तत्व होता है, उसका स्वभाव क्या है जानना देखना और वितरागता, ऐसा जिसके लिए भाव भासना हो गई, वह भी निमित्त बन सकती है, अर्थ भी निमित्त बन सकता है दृष्टि की निर्मलता। अवगार और परमावगार दो और सम्यक दर्शन कहे गए हैं। अवगार सम्यक दर्शन तब होता है जबकि अंग प्रविष्ट के साथ साथ अंग बाह्य, जो आज अपने पास जितना ज्ञान है वो भी है, और जो आज उपलब्ध नहीं है लेकिन गणधर स्वामी के द्वारा कहा गया द्वादशांग है, उस सब का ज्ञान प्राप्त हो जाए किसी को, फिर उसके भीतर जो दृष्टि की निर्मलता और श्रद्धान आता है उसको अवगार सम्यक दर्शन कहते हैं। और केवल ज्ञान होने के बाद वस्तु स्वरूप को अपनी आंखों से स्पष्ट देख रहे हैं, केवल ज्ञान के माध्यम से, तब जो दृष्टि में निर्मलता आती है उसे परमावगार सम्यक दर्शन। भैया कितने सारे निमित्त हैं अपनी दृष्टि निर्मल बनाने के, चाहे जिस निमित्त का आप आलंबन लें और अपनी दृष्टि को निर्मल बनाए। दर्शनम कर्णधारम तन मोक्ष मार्गे प्रशक्षते विद्याव्रत संभूति स्थिति वृद्धि फलोदया न संत सती सम्यक्ते बीजा भावे तरोरु। ऐसी सम्यक दर्शन की महिमा गाई है। सम्यक दर्शन को तो अपने लिए संसार से पार होने के लिए खेवटिया कहा, जैसे कि नाव से नदी पार कराने के लिए नाविक महत्वपूर्ण है, ऐसा ही दृष्टि की निर्मलता भी इस संसार रूपी समुद्र से पार लगाने के लिए नाव में बैठे हुए नाविक की तरह जो उस पार लगाता है नाव को, तो दर्शन को कर्णधार माना है। दृष्टि की निर्मलता अगर प्राप्त हो गई है तो हम आसानी से अपने संसार रूपी समुद्र में पतवार चला करके जैसे कि नाविक और नदी पार कर लेता है, ऐसे ही इस संसार समुद्र से भी पार हो सकते। इतनी प्रशंसा की। इतना ही नहीं, विद्या व्रत संभूति स्थिति वृद्धि फलोदया, इन सब की स्थिति वृद्धि और फल किस किस चीज की, चाहे कितना ज्ञान हो, चाहे कितना अच्छो आचरण हो गए, लेकिन इन सब के बीच में आपकी दृष्टि ठीक नहीं है अगर, तो ये ना इनकी स्थिति है, ना इनकी वृद्धि है, ना इनमें फल लगेंगे। ज्ञान भी फलवान नहीं हो सकता, आचरण भी फलवान नहीं हो सकता अगर आपके पास दृष्टि नहीं है। तो इतना महत्व दृष्टि की निर्मलता का और सम्यक दर्शन का है, अपन को समझना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि ऐसी दृष्टि अपनी भी प्राप्त हो जाए। अपन भी ऐसे भेद विज्ञान को, शरीर अलग है आत्मा अलग है, चिंता अपन आत्मा की करें, सब जीवों के आत्मा की चिंता भी अपने मन में हो। आचार्य श्री हमेशा कहते हैं कि अपन क्या चिंता करते, किसान क्या चिंता करता कि हमारे सब पानी गिरे, पानी गिरे सो का अपने खेत में गिरे, हाँ सब में पानी गिरे, मन फसल कौन की काटेंगे, सबकी नहीं अपने खेत की। बताइए, धारणा तो भाएंगे सबके कल्याण की, उसमें भी अपना कल्याण नियत है। ऐसा विचार करके और अपन ऐसी दृष्टि प्राप्त करें जिससे कि प्राणी मात्र के कल्याण की भावना अपने भीतर आए और अपन भी उसी में शामिल होकर के अपना कल्याण कर सकें। इस प्रकार अपन को भावना भाना चाहिए। इसी भावना के साथ मैं आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज की जय। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग दर्शन करने वाला है।
जग जग विषयों में रच पचित गाफिल निद्रा में सोता हूँ,
अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक होता
हो, अर्धन शाता सन्नाटा वन में वन चारे चरते हूँ,
तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो,
करते तप शैल नदी तट पर तरु तल वर्षा की झड़ियों में,
समतारस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में,
अंतर ज्वाला हरते वाणी मानो झड़ते हैं फूल झड़ियां,
भव बंधन तड़ तड़ टूट पड़े खिल जावे अंतर की कलियां,
तुम सादाने क्या कोई
लुटाया करते हो शम समिति अविनश्वर मनिया,
हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम, हे ज्ञान दीप आगम प्रणाम,
हे शांति त्याग के मूर्तिमान शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम,
उदक चंदन पुष्पतश्चर सुदीप सुधूप फलार्घत,
दमन मंगल दान रवाकुले जिन ग्रहे मुनि
आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज समस्त मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज मुनि श्री भूमिशाली महाराज चरण में अर्घ्य अर्पण करते स्वाहा।
मिथ्या तमनाश देखो काल के प्रकाश देखो आपा पर वास देखो भानु शिव कानी है,
क्षण द्रव्य जान देखो वंदे विधि भान देखो स्वपर पहचान देखो परम
अनुभवताय वेखो जीवो के जताय वेखो काहू न सताय वेखो भव्य उरयानी है,
जहाँ तहाँ का
सुख विस्तार को नहीं देने वाले हो।
वाणी के ज्ञान के सूझ लो कालो सुवाणी मस्तक नमो सदा दे तुमो दे। हे दिन वाणी भारती तो ही जपो दिन त्रैन हो तेरा शरणागये सो पावे सुख।